नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के तहत शीघ्र सुनवाई और न्याय की गारंटी का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पुनः परीक्षा के बाद 1563 परीक्षार्थियों के संशोधित परिणाम घोषित किए। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप आज से लंदन में शुरू हो रही है और चेन्नई में महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने चर्चा में भागीदारी करते हुए पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि और लोगों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
देश का ये चुनाव पिछले 10 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महानुष्ठान पर मोहर है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। देश के गरीब का पेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया।
अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए की गई योजनाओं को लेकर श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बैंक की पूंजी कई गुना बढ़ी है और गैर निष्पादित संपत्तियों में कमी आई है। भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि किसानों के कल्याण और महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत अब तक किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए गए हैं। चर्चा अभी जारी है। इससे पहले सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि देश की संसद से विद्यार्थियों को संदेश दिया जाना चाहिए कि नीट मुद्दा संसद के लिए महत्वपूर्ण है।
पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद की कार्यवाही नियमों और परंपराओं पर आधारित होती है। उन्होंने विपक्ष से कहा कि कोई भी चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ही की जानी चाहिए।
ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है।
राज्यसभा में आज सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को खारिज कर दिया। बाद में सदन ने संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। चर्चा में भागीदारी करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभिभाषण एक दृष्टि वक्तव्य होना चाहिए कि कैसे चुनौतियों से निपटा जाए। अभिभाषण में इस तरह के बिंदुओं और दिशाओं का अभाव था।
इस साल राष्ट्रपति जी का दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे, लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है।
श्री खड़गे ने पेपर लीक, ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और अन्य मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने महात्मा गांधी, डॉ भीमराव अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने पर प्रश्न उठाया। सभापति ने श्री खरगे की टिप्पणी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना करना उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सभी प्रतिमाओं को एक ऐसी जगह पर स्थापित किया गया है जहां लोग अच्छी तरह से देख सकेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। श्री खरगे ने रेलवे में खाली पदों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि 3 लाख पद खाली हैं जिन्हें भरा जाना चाहिए। इसके जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे में 5 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिली है, जो पूर्व की यूपीए सरकार की तुलना में बहुत अधिक है। इससे पहले दोनों सदनों ने T20 विश्व कप क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को बधाई दी। इससे पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सरकारी एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आज संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों के अन्य वरिष्ठ नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज से लागू हुए 3 आपराधिक कानूनों से देश में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित ये नई व्यवस्था प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी है।
आजादी के 77 साल बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कम्प्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा।
श्री शाह ने कानूनों के बारे में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे।
सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है, जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है।
गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ राजद्रोह कानून को खत्म कर नए प्रावधान लागू किए हैं। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो गए हैं। ये नए कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने मौजूदा अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियों में 23 संशोधन किए हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और कर्तव्य के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना का नेतृत्व करने का अवसर मिलना उनके लिए बहुत गर्व और सम्मान का क्षण है। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण का आह्वान किया और कहा कि सेना आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी पहल, प्रणालियों और उपकरणों को प्रोत्साहित करेगी। जनरल द्विवेदी ने नागरिकों को यह भी आश्वासन दिया कि भारतीय सेना सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम है।
भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियाद पर आधारित है। इस अवसर पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के संपूर्ण समन्वय से यानी सिनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के फुल स्पेक्ट्रम में ऑपरेशन के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे भारत के राष्ट्र हितों को सुरक्षित किया जा सकेगा। सेना के सभी रैंक्स और डिफेंस सिविलियंस के हितों और कल्याण का ध्यान रखना मेरी प्राथमिकता रहेगी।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल से विभत्स वीडियो सामने आया है जो कट्टरता की याद दिलाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि इसको टीएमसी कैडर और विधायक उचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे संदेश खाली हो या उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की निंदा करते हुए कहा कि राज्य में असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संविधान और इसके मूल्यों में विश्वास नहीं करती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पुनः परीक्षा के बाद आज 1563 परीक्षार्थियों के संशोधित परिणाम घोषित कर दिए। नए नतीजों के बाद एनटीए ने सभी परीक्षार्थियों की रैंक भी संशोधित की है। एक रिपोर्ट।
एनटीए ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी परीक्षार्थियों के संशोधित स्कोर कार्ड उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसमें कहा गया कि पात्र 1563 परीक्षार्थियों में से 813 परीक्षार्थियों ने दोबारा परीक्षा दी। परीक्षार्थी exams.nta.ac.in/neet पर लॉगिन करके संशोधित स्कोर कार्ड देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1563 परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा लेने का निर्देश दिए जाने के बाद पिछले महीने की 23 तारीख को दोबारा परीक्षा का आयोजन हुआ था। इन परीक्षार्थियों को मूल परीक्षा में अनुग्रह या प्रतिपूरक अंक दिए गए थे। इन्हें विकल्प दिया गया था कि वे या तो दोबारा परीक्षा में शामिल हों या अनुग्रह अंक के बिना अपने मूल अंकों को रखें। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर।
मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान मूसलाधार बारिश के कारण पश्चिम उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी से बात करते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने कहा कि मॉनसून जल्द ही पूरे देश में आ जाएगा और आने वाले 4-5 दिन में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फैल जाएगा।
आज ही हमने ऑरेंज अलर्ट के साथ वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिए हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बाकी सभी नॉर्थ के राज्यों में, और कल परसों ये जो वार्निंग है ये जारी रहेगी। साथ ही साथ अगर भारी वर्षा का बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगले 4-5 दिन तक एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी रहेगी।
तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 30 रूपये की कटौती की है। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य परिवर्तन आज से प्रभावी होगा। मूल्य में कमी के कारण दिल्ली में सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य अब 1,646 रूपये होगा। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता आज से लंदन में शुरू हो रही है। पहले दिन मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला एस्टोनिया के मार्क लाजेल से होगा। भारत के सुमित नागल इस वर्ष अपने विंबलडन अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी का मुकाबला फ्रांस के एड्रियन मानारियो और जियोवानी से होगा। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चेन्नई के एमए चिदम्बर स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दूसरी पारी के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट पर 336 रन बना लिए थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात सबके लिए घर के सपने को साकार कर दे प्रधानमंत्री आवास योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप महानिदेशक गया प्रसाद तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण चर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के तहत शीघ्र सुनवाई और न्याय की गारंटी का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पुनः परीक्षा के बाद 1563 परीक्षार्थियों के संशोधित परिणाम घोषित किए। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप आज से लंदन में शुरू हो रही है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।